आज के इस सत्र में मैं मेहमानों को मंच पर निमंत्रण करती हूँ। श्री हरिश्चंद्र जी, प्रोफेसर डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे जी, हमारे वरिष्ठ राजयोगी सूर्यबाई जी, मेघाबेन पार्क के मेघाबेन, आज के सत्र को हम 2 मिनट प्रभु स्मृति से शुरू करेंगे। में जो अलाइनिंग द लाइफ विथ आर स्पिरिचुअल ट्रूथ, इस सेशन में आप सबका बहुत स्वागत है। और मैं निवेदन करती हूँ अपने बहनों को कि फूलों से हमारे अतिथियों को स्वागत करें। तालियों से आप भी स्वागत कर सकते हैं। शांति, आज का सत्र की टॉपिक है अलाइनिंग माय लाइफ विथ माय स्पिरिचुअल ट्रूथ। अलाइनमेंट मना कार तो सबके पास तो होगा ही, यूजुअली तो आप हर साल या 1.5 ईयर में कार की व्हील के अलाइनमेंट कराने जाते है ना। अलाइनमेंट मना वो कार की जो व्हील है वो दूसरे व्हील से और उसकी बॉडी से सिंक में रहे, तो करना क्यों जरूरी होता है और ना करे तो क्या प्रॉब्लम होता है, उसकी एफिशिएंसी कम होता है, वो स्मूथ नहीं चलता है, ज्यादा फ्यूल लेता है, तो बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं। तो ऐसे ही हमारी जिंदगी में अलाइनमेंट की बहुत जरूरी है। बट व्हील को तो कार की बॉडी से अलाइन करेंगे, तो बट हमारी जिंदगी को किस चीज से हम अलाइन करेंगे? हमारी जो आध्यात्मिक सत्यता है, हमारी ओरिजिनल ट्रूथ है, उससे अलाइन करना बहुत जरूरी है। नहीं तो जनरली आजकल हम जो फेस कर रहे हैं, बहुत सारा स्ट्रेस हो, जो तनाव हो, रिश्तों में कुछ भी हो, उसको हम फेस करते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सत्र है। तो फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और अभी मैं निमंत्रण करती हूँ श्री हरिश्चंद्र जी को, जो IAS है उत्तराखंड के। हरिश्चंद्र जी नोएडा से है और सीनियर ब्यूरोक्रेट है यूपी गवर्नमेंट में। एट प्रेजेंट ही इज पोजिशन्ड एज अ रेसिडेंट रिप्रेजेंटेटिव एट कोलकाता। तो मैं चाहती हूँ वो आकर अपनी शुभकामनाएं दें।
ओम शांति। मंच पर आसीन सभी ब्रह्मज्ञानी परमात्मदर्शी और सामने बैठे हुए परम तत्व को जानने के अभिलाषी, मैं सभी को प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि अभी हमारी बहन ने बताया, जो आज का टॉपिक है, जो विषय है, वो ये कि अलाइनिंग माई लाइफ विद माई स्पिरिचुअल ट्रूथ। तो इस पूरे सेंटेंस में, पूरे वक्तव्य में दो बार माई शब्द का प्रयोग हुआ है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं कोई पराई बात न कहूं, ये माई ही रहे। जिन लोगों ने भी थोड़ा सा अपने भीतर गहराई में उतर के झांका है, उन सबके अनुभव करीब करीब एक जैसे हैं। हर तरफ महफिल उसी की है सजी, जिंदगी का गीत सुनना है रुको। हर तरफ महफिल उसी की है सजी, जिंदगी का गीत सुनना है रुको। बह रही रसधार उसकी हर तरफ, इस अमृत का पान करना है झुको। बह रही रसधार उसकी हर तरफ, इस अमृत का पान करना है झुको। नृत्य उसका ही अहर्निश चल रहा हो अगर थिरकन तुम्हारे पांव में, नृत्य उसका ही अहर्निश चल रहा हो अगर थिरकन तुम्हारे पांव में। तुम उसी की ज्योत से जगमग हुए पल रहे हो, तुम उसी की छांव में। ये पूरा का पूरा संसार एक ही परमपिता परमात्मा की छांव में पल रहा है। मैंने अपनी अब तक की जीवन यात्रा में, चूंकि मैं कह चुका हूं कि जो भी मेरे अपने अनुभव हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उन आध्यात्मिक सच के जरिए मैंने अपने जीवन को कैसे ठीक ढंग से, कैसे तालमेल बिठाया है या कोशिश की है, वो आपके बीच में शेयर करने की कोशिश करूंगा। कुछ कहानियां हैं छोटी छोटी मेरी अपनी, जो मैंने अनुभव की है, जो मैंने बातें की हैं, कभी फूलों से, कभी पत्तियों से, कभी वृक्षों से, कभी पशुओं से, वो छोटे छोटे वार्तालाप हैं जो आपके बीच में मैं बताना चाहूंगा। कई साल बीते, एक बूढ़े वृक्ष ने मुझसे कुछ बातें की थी। मैं अपने गांव में जाता था, सन्नाटों से बड़ा प्यार था मुझे, अकेलापन बहुत अच्छा लगता था। जब कभी मौका लगता था चला जाता था। एक छोटा सा तालाब था, उसी के किनारे एक पीपल का पेड़ और उससे हटके थोड़ा चार पांच पेड़ और कुछ नीम के कुछ आम के थे। पीपल का पेड़ तो अब नहीं है, बाकी पेड़ अभी भी खड़े हुए हैं। तो वहां मैंने ऐसा आभास किया, अनुभव किया, सुना कि जैसे वो बूढ़ा वृक्ष जवान वृक्षों को कुछ समझा रहा है। वे जो नए नए वृक्ष थे, जवान वृक्ष थे, वो सब आपस में लड़ रहे थे। उन वृक्षों की पत्तियां, उनकी शाखाएं सब एक दूसरे से उलझे पड़े हुए थे शास्त्रार्थ में। एक वृक्ष दूसरे से कह रहा था, तेरी शाखाएं टेढ़ी हैं, तेरे पत्ते काले हैं, छोटे हैं, टेढ़े हैं, कटे हुए हैं। दूसरा भी इसी तरह के तर्क दे रहा था। सभी को ये था कि हम श्रेष्ठ हैं। ये केवल वृक्षों के बीच की बात ही नहीं थी, एक ही वृक्ष के पत्ते आपस में उलझे हुए थे। कोई कह रहा था कि तू छोटा है, तेरी शक्ल ठीक नहीं है, तू टेढ़ा है, तेरा स्वाद ठीक नहीं है। इस तरह का वार्तालाप चल रहा था। तब उस बूढ़े वृक्ष ने उन वृक्षों को समझाया था और मैंने वो बात सुनी थी। उस बूढ़े वृक्ष ने कहा था, नादानों, ये जो तुम आपस में लड़ रहे हो ना, जरा सा अपने भीतर झांक कर देखा होता तो तुम्हें पता चलता, ये जो पत्ते लड़ रहे हैं, ये पत्ते थोड़ा सा अगर अपने भीतर झांक के देखें तो इन्हें पता चलेगा कि ये पत्ते एक ही डाल से लगे हुए हैं, और ये जो डालियां आपस में भिड़ी हुई हैं, ये भी एक तने से लगी हुई हैं, और ये जो वृक्ष आपस में लड़ रहे हैं, ये भी थोड़ा सा झांक कर देख लें तो पता चलेगा कि इनकी जड़ें भी एक ही जमीन के अंदर है। झगड़े का तो कोई कारण ही नहीं है, बेवजह उलझे हुए हैं। एक ही पृथ्वी से सभी वृक्षों को जीवन जल मिल रहा है, तो झगड़ा किस बात का है? झगड़ा सिर्फ इस बात का है कि पत्ते शाखाएं सब ऊपर ही ऊपर देख रहे हैं, जड़ों की तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं है। और अगर जड़ों की तरफ देखते तो पता चलता कि हर वृक्ष में उसी पृथ्वी से जल आ रहा है जिससे दूसरे में आ रहा है। हर पत्ते को उसी जगह से हरियाली मिल रही है जैसे बाकियों को मिल रही है। हमने जिंदगी को इतना खराब कर दिया है बाहर झांक झांक के, भीतर उतरने की कभी कोशिश ही नहीं की है। उसी परमात्मा की आहट मंदिर में सुनाई पड़ती है, उसी के गीत मस्जिदों में सुनाई पड़ते हैं, लेकिन हम अपनी तरह के गीत सुनना पसंद करते हैं। हमने एक धारणा में, एक आकार में अपने को ढाल लिया है, और अगर उससे हटके कोई आकार मिलता है तो हम उसे पराया कह देते हैं। सारा झगड़ा इसी बात का है। जुस्त जू जिसकी हरम में और बुत खाने में है, जिसकी चर्चा मंदिर में और मस्जिदों में होती है। जुस्त जू जिसकी हरम में और बुत खाने में है, नूर उस जलवे का मेरे दिल के कासाने में है। उस परमपिता परमात्मा का प्रकाश तो हमारे हृदय में, सभी के हृदय में है, केवल हमारे हृदय में नहीं, सभी के हृदय में है। तो मैं उस बूढ़े वृक्ष का आज भी आभारी हूं जिसने मुझे ये समझा दिया कि सारे पेड़ों में एक ही परमात्मा, एक ही पृथ्वी, एक ही जल लगातार बह रहा है। यहां कोई भी पराया नहीं है, कोई भी दूसरा नहीं है, कोई भी दुश्मन नहीं है। मैं जब भी कभी मुझे समय मिलता है तो आवारागर्दी करता हूं, खूब घूमने निकल गया जंगल में, पेड़ों के बीच, पशुओं के बीच, जहां भी अच्छा लगा। तो ऐसे ही एक खाली समय में मैं एक रास्ते से गुजरा तो मुझसे एक सूखी कटीली झाड़ी ने कुछ बात की थी। मैं रुक के काफी देर बैठा और मुझे लगा कि शायद ये बात आज तक दुनिया के किसी शास्त्र में भी नहीं कही गई है। उस कटीली झाड़ी ने मुझे बुलाया और कहा कि सुनते जाओ, थोड़ा जब निकले हो घूमने तो कुछ सीख के जाओ। बड़े बड़े शंकराचार्यों से मिले होगे, ज्ञानियों से मिले होगे, परम तत्व को जानने वालों से मिले होगे, आज कुछ हमसे भी सीख लो। और चूंकि मैं घर से निकला ही था ऐसे मैं रुका, तो उस सूखी झाड़ी के पास जब मैं बैठा थोड़ी देर तो मुझे उस कटीली झाड़ी के आस पास एक भी कांटा नहीं मिला। उसी झाड़ी लेकिन सारे के सारे कांटे उसी झाड़ी में लगे हुए, एक भी गिरा नहीं नीचे। तो मुझे लगा कि ये देखो कटीली झाड़ी है, ये सूख जाती है लेकिन अपने कांटे कभी रास्ते में गिराती नहीं है। आपने देखा होगा कि फलदार वृक्ष अपने फल गिरा देता है, और वो भी जब पक जाते हैं तब। इतनी समझ है उसमें, अगर आम का पेड़ हो तेज तूफान न चले तो कच्चा आम गिरता नहीं है, और जब पक जाता है तो अपने आप गिर जाता है। ये वृक्ष भी जानते हैं कि जब मीठे हो जाओ, किसी काम के हो जाओ, तब गिरो, तब किसी काम में। और आप जाके कभी देखना किसी बबूल के पास, किसी कीकर करील के पास, बड़े बड़े कांटे होते हैं लेकिन एक भी कांटी अपने आप नहीं झड़ता है, गिरता ही नहीं है, सड़ जाएगा उसमें लेकिन गिरता नहीं। ये झाड़ियां भी हमसे ज्यादा समझदार हैं, ये कभी किसी के रास्ते में कांटे नहीं बिछाती हैं। और एक मनुष्य है जो कांटे बिछाता भी है और कांटे बोता भी है, और फिर ये उम्मीद करता है कि समाज में सौहार्द रहे, हार्मनी रहे, और बड़ा एक ऐसा साम्राज्य पैदा हो जहां आदमी सुखी रहे। कैसे रह सकता है, कैसे संभव है? मैं एक बार एक रास्ते से गुजरा तो किसी किसान ने चक्रोड में से गड्ढा खोद दिया। आप लोग भी, अगर जो लोग गांव से होंगे, अक्सर देखा होगा लोग अपनी मेड़ पे मिट्टी खोद के डाल देते हैं, तो उसमें रास्ते में गड्ढा खोद दिया। फिर महीने दो महीने बाद जब मैं वहां से निकला तो ये गड्ढा अपने आप खत्म हो गया। मुझे लगा कि ऐसा क्यों हुआ, तो पता चला कि बारिश हुई और बारिश के साथ जो पानी बहा उसके साथ मिट्टी आके बही और गड्ढे में भर गई, हवा चली, धूल उड़ी और उस गड्ढे में बैठ गई। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कुदरत भी गड्ढे पसंद नहीं करती है, अगर कोई खोद भी गया है तो भरने की कोशिश करती है, और हम लोग सिवाय गड्ढे खोदने के कुछ नहीं करते हैं। खुद के लिए खोदते हैं, दूसरे के लिए खोदते हैं और गिराने की कोशिश करते हैं। और सारी मनुष्यता इसीलिए पीड़ित है, इसीलिए परेशान है। तो मैंने तो गड्ढा खोदना बंद कर दिया कि गड्ढा तो मैं नहीं खोदूंगा, और उस झाड़ी को भी मैंने वादा किया था कि मैं अब किसी के रास्ते में कांटे नहीं बिछाऊंगा। मनुष्य हूं, कटीली झाड़ी से गया भी था तो नहीं हूं, और मैं समझता हूं कि यहां बैठा हुआ कोई भी इंसान कम से कम इन झाड़ झंकार से गया बीता तो नहीं है। हम अपने को मनुष्य कहते हैं तो कुछ तो हमें ऐसा होना चाहिए जो हम कह सकें कि हम तुमसे ऊंचे हैं, तुमसे बड़े हैं। पर बड़ा मुश्किल है। अगर आदमी, मैं अक्सर एक बात कहता हूं, ये जो दिल्ली बड़े बड़े शहर हैं, और मैं चूंकि दिल्ली के पास रहता हूं तो दिल्ली का मुझे बड़ा अनुभव है, वीकेंड पे फ्राइडे के दिन पूरे दिल्ली के लोग भाग जाते हैं जंगल में। उत्तराखंड के जितने भी जंगल हैं वहां राजा जी पार्क और जितना भी, वहां घूमते हैं दो दिनों फिर आते हैं। जंगलों में जरूर कुछ ऐसा है जो दिल्ली में नहीं है। जंगलों में कुछ न कुछ ऐसा आकर्षण है। पशुओं में आज भी कुछ ऐसी बात है कि आदमी देखने जाता है उन्हें। जंगल का एक जानवर दिल्ली आने के लिए तैयार नहीं है, चाहे कितनी उनको घूस दो, रिश्वत दो। कुछ तो खराबी दिल्ली में है और कुछ तो अच्छाई जंगल में है। ये जानवर भी अगर आदमी इन्हें परेशान न करे तो आदमी से हजार गुना बेहतर है, हजार गुना श्रेष्ठ है। दुनिया में कोई भी प्राणी दुखी नहीं है सिवाय आदमी के, और आदमी में सबसे ज्यादा संभावना है सुखी होने की। आदमी की कीमत इसलिए ज्यादा नहीं है कि हम आदमी हैं, आदमी की कीमत इसलिए ज्यादा है क्योंकि हम में संभावना है। हम किसी गधे से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो शंकराचार्य हो जाएगा, वो वेद पढ़ लेगा, योगासन कर लेगा, नहीं कर सकता है, उसकी लिमिट है। और आदमी अनलिमिटेड है। कहते हैं आदमी उठे तो इतना उठ जाए कि भगवान हो सकता है, और गिरे तो इतना गिर जाए कि दुनिया का कोई जानवर भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता है। तो अभी तक तो हमें दूसरा काम आया है, अभी तक उठना तो आया नहीं। ये 10-12 लोग जो बुद्ध, महावीर, राम, कृष्ण, ऐसे 10-20 लोग मुश्किल को होंगे जिनके नाम हम ले सकते हैं। अगर मुझसे ही कोई पूछे कि 20 लोगों के नाम बता दो तो हम बता ना पाएंगे। बहुत कम लोगों को उठना आया है। लेकिन चूंकि मनुष्य क्या है, एक संभावना है, मनुष्य क्या है, एक पॉसिबिलिटी है, तो इस पॉसिबिलिटी की कीमत है, इसे उठाया जा सकता है, ये ऊपर उठ सकता है। तो हम अगर मनुष्य हैं, हम समझते हैं कि हमें संभावना है तो कोशिश करनी चाहिए उठने की। ये दुनिया उतनी बुरी नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा था कि ये संसार दुखमय है, लेकिन मैं दावे के साथ साथ इस बात को कहता हूं कि संसार दुखमय इसलिए है क्योंकि हमें जीने का सलीका नहीं आता है। संसार में कुछ भी दुखमय नहीं है। ये देखो, सुबह उगता हुआ सूरज कभी दुखी देखा किसी ने? चलती हुई हवाएं, बरसते हुए बादल, किसी को दुखी देखा है? सुबह सुबह जब मैं उठता हूं 4-5 बजे तो चिड़ियां ऐसी चहचहाती हैं, गीत गाती हैं, ईर्ष्या होती है उनसे। गीत हमें गाने चाहिए, हम रोते हैं सुबह सुबह, और ये चिड़ियां चील कौए हमसे ज्यादा सुखी है। तो हमारे चाल चलन में, हमारी सोच में कहीं न कहीं तो कोई गड़बड़ी है, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। चूंकि मनुष्य अकेला प्राणी है जो सोच सकता है, जो विचार कर सकता है, तो अगर हमारे अंदर कोई कमी है तो उसे हम दूर भी कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, ये आसानी से दूर हो सकता है अगर हम अपनी धारणाएं गिरा दें। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भूकंप आता है तो क्या होता है, दीवारें गिरती हैं, फिर वो चाहे मंदिर की हो, मस्जिद की हो, गुरुद्वारों किसी की भी हो, आदमी जिन दीवारों को उठाता है, मजबूती से बनाता है, उन्हीं दीवारों को ये भूकंप तोड़ देता है। देखो प्रकृति क्या चाहती है हमसे। हम दीवार पे दीवार बनाए जा रहे हैं, किसी के नाम पे बनाए जा रहे हैं, कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी किसी नाम पे, और कुदरत इन दीवारों को ध्वस्त करती है। तो जिस दिन भी हमें इतनी समझ आ जाएगी, ये दीवारें जिस दिन गिर जाएंगी, उसी दिन ये संसार वैसा ही हो जाएगा जैसा यहां बैठ के हम सोच रहे हैं। कम से कम मैं इस मंच को एक बात के लिए तो धन्यवाद देना चाहूंगा। अगर ये सवाल मन में उठा है कि सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्मित होना चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए आध्यात्मिकता के द्वारा, क्योंकि इसके अलावा कोई मार्ग भी नहीं है, तो कम से कम हमने एक बात तो स्वीकार कर ली कि हम में सौहार्द नहीं है। ये जो प्रश्न उठा है, मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि दुनिया में जितने भी प्रश्न उठे हैं आज तक, ये सारे के सारे दुखी लोगों के प्रश्न हैं, परेशान लोगों के प्रश्न हैं। कोई भी प्रश्न कभी भी सुख में नहीं उठता है। आप देखते हैं कि जब किसी का एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, तो लोग कहते हैं कि हे भगवान, हमने क्या गलती की थी कि मेरी टांग टूट गई। और जब नहीं टूटी होती है तब कोई नहीं कहता कि हे भगवान, सबकी टूट रही है, मेरी क्यों नहीं टूट रही। सुख का कोई सवाल ही नहीं है। किसी के घर में कोई मर जाता है तो पूछता है कि हे परमात्मा, क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ, मैंने कौन सा पाप किया था, क्यों मेरा बच्चा मर गया। जब नहीं मरता तो कोई नहीं कहता कि भगवान सबके यहां मर रहे हैं, हमारा नंबर कब आएगा। सब प्रश्न दुख के हैं। लेकिन अगर प्रश्न भी पैदा हुआ है तो ये छोटी बात नहीं है कि प्रश्न में, क्योंकि प्रश्न में ही उत्तर है। आज प्रश्न उठा है तो कल उत्तर भी आएगा। तलाश अच्छी होनी चाहिए, सच्चे दिल से होनी चाहिए। अगर हम इंसान हो सके, अगर हम मनुष्य हो सके। मैं अक्सर कहता हूं कि लोग धार्मिक तो हैं, क्रियाएं करते हुए हैं, कोई कुछ ये जाप कर रहा है, कोई वो हवन कर रहा है, कोई उधर नमाज कर रहा है, धार्मिक तो हैं, लेकिन धार्मिकता नहीं उनमें है। अगर जिस दिन भी धार्मिकता का उदय होता है, उसे समझ में आ जाता है कि इस जगत का कोना कोना, कण कण, सब उसी परमात्मा से आच्छादित है। ईसा वश्य मिदम सर्वम यत किंचित जगताम जगत, तेन तिक्तेन भुंजी था मागधा का शुद्धनम। ये ईसावश उपनिषद का एक सूत्र है, कहता है कि ये समस्त संसार उसी एक परमात्मा से आच्छादित है। कोई इसका कोना ऐसा है ही नहीं, कोई इसका ऐसा जगह नहीं है जहां उसकी मौजूदगी न हो। और मजे की बात यह है कि जहां सबसे कम विवाद होना चाहिए वहीं सबसे ज्यादा विवाद है। हम विज्ञान को कोसते हैं कि विज्ञान ने आदमी को बहुत दूर पहुंचा दिया है, भौतिकता में फंसा दिया है। कोई टेलीविजन किसी को निमंत्रण नहीं देता कि मुझे अपने घर ले जाओ, हम खुद लेने जाते हैं। कोई बंदूक नहीं कहती कि हमें अपने घर में ले जाओ और किसी की हत्या करो, हम खुद लेने जाते हैं। हम उसका उपयोग क्या करेंगे ये हम ही तय करते हैं, कोई और नहीं तय करता है। आदमी निर्णायक है, आदमी कैसा जीवन जिए इसके लिए आदमी निर्णायक है। एक बार एक छोटी सी दो मिनट की और कहानी मैं कहूंगा और विदा लूंगा कि एक बार एक मंदिर में एक धर्म स्थल पे एक पुजारी ने प्रवचन किया। अमूमन जैसा होता है पूजा प्रार्थना के बाद प्रवचन होता है, लोग सवाल करते हैं। तो उस पुजारी ने ये अपने प्रवचन में कहा कि जो लोग सच्चे हैं और जिनकी ईश्वर में आस्था है वही लोग स्वर्ग के अधिकारी होंगे। तो उस सभा में एक भला आदमी बैठा हुआ था, उसने एक सवाल किया। सवाल ये किया कि महाराज आपने ये कहा है कि जो लोग सच्चे हैं और जिनकी ईश्वर में आस्था है वही लोग स्वर्ग में जाएंगे, तो मेरा एक सवाल है। सवाल ये है कि जो लोग सच्चे हैं लेकिन ईश्वर में आस्था नहीं है वो कहां जाएंगे, और जिनकी ईश्वर में आस्था है लेकिन सच्चे नहीं है उनका क्या होगा। ये बड़ा प्रामाणिक सवाल था, क्योंकि वो आदमी मानता ही नहीं था भगवान को, वो तो ईमानदार था, बिल्कुल प्योर था, अब वो यही पर्याप्त मानता था। तो उसने अपनी समस्या बताई कि जो ईमानदार तो है जी, लेकिन ईश्वर को नहीं मानता है, उसका क्या होगा। पर्ची आ गई है, याद दिला दिया गया है कि समय पूरा हुआ। वैसे तो ये दुनिया ऐसी है जिसमें किसी की बात पूरी होती नहीं है, हर आदमी को अपना अधूरा काम छोड़ के जाना पड़ता है, अपनी अधूरी बात छोड़ के जानी पड़ती है। फिर भी अगर दो तीन मिनट की मोहलत मिल जाए तो मैं अपनी बात पूरी कर दूं, क्योंकि ये ऊपर वाले का परवाना तो है नहीं कि वहां कोई दरखास्त और एप्लीकेशन नहीं चलेगी। तो वो पुजारी घबरा गया, उसने कहा कि भाई मुझे तो इसका उत्तर पता नहीं है, मैं अपने सीनियर लोगों से पूछूंगा, बड़े पुजारी से पूछूंगा, शंकराचार्य से पूछूंगा। 7 दिन का टाइम दिया उसने कि 7 दिन बाद आइए, हम बताएंगे आपके उत्तर को। उन 7 दिनों में उसने सब जगह पूछा, कहीं पता नहीं चला। तो जिस दिन उसने उत्तर देना था इस सवाल का, उस दिन उसे रात भर नींद नहीं आई पुजारी को। तो सुबह सुबह जब जल्दी आ गया मंदिर में, उसे एक नींद आ गई और नींद में एक सपना देख लिया। सपना ये देख लिया कि वो स्वर्ग में पहुंच गया है। तो जब स्वर्ग में पहुंचा, उसने देखा कि ये स्वर्ग तो अजीब सा स्वर्ग है, इनके दरवाजे पे भी जंग खाई हुई है, किवाड़ बेकार हैं, पलस्तर उखड़ा हुआ है अजीब सा। उस पुजारी ने चौकीदार से पूछा कि भाई साहब क्या ये स्वर्ग है, तो उसने मना कह दिया कि हाँ यही स्वर्ग है। फिर और पूछा कि भाई यहाँ ईसा मसीह आए हैं, भगवान बुद्ध आए हैं, राम आए हैं, कृष्ण आए हैं। उस आदमी ने कहा इस टाइप का तो कोई आदमी यहां आया नहीं है। अब उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि अगर ये लोग भी स्वर्ग में नहीं है तो हमारा नंबर कहां से आ सकता है, हम तो बहुत छोटे मोटे आदमी हैं। फिर भागा वहां से, देखा कि एक दूसरी बस नर्क की तरफ जा रही है, उस पर बैठ गया। तो वो जब नर्क के द्वार पे पहुंचा तो वहां का वातावरण बिल्कुल बदला हुआ, बढ़िया फूल खिले हुए, बड़ी हरियाली, बजता हुआ संगीत, बहती हुई हवाएं, मन मोह गया। और लिखा गेट पे नर्क। तो उसने फिर पूछा भाई साहब क्या ये नर्क है, उन्होंने कहा हाँ ये नर्क है। फिर डरते डरते पूछा कि ये बुद्ध, महावीर, राम, कृष्ण ये लोग यहां आए हैं, तो उसने कहा हाँ ये लोग यहां आए हैं। पुजारी ने कहा भाई साहब ये हमने तो शास्त्रों में पढ़ा है कि नरक तो बहुत खराब था, अब बड़ी वहां आग जल रही है, कड़ाव जल रहे हैं, लोगों को पकौड़ा बनाया जा रहा है, यहां तो ऐसा कुछ लगता नहीं है। तो उस चौकीदार ने कहा कि मैं आपको सच्चाई बताऊं, पहले ये नर्क ऐसे ही था, पर जब से ये राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, सुकरात, जीसस, ये 10-12 लोग यहां आ गए, इन लोगों ने यहां की हवा बदल दी, अपने प्रयास से इस नर्क को स्वर्ग बना दिया है। यही आदमी का प्रारब्ध है। ये हमें तय करना है कि हमें गमलों में कांटे उगाने हैं कि फूल उगाने हैं। ये हमें तय करना है कि हमें कैसे रहना है और कैसे नहीं रहना है। परमात्मा तो रास्ता देता है, आप दुखी होना चाहो दुखी होने के कारण है, सुखी होना चाहो सुखी होने के कारण है। तो मैं तो बस 2 लाइनों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं कि सीख ले फूलों से गाफिल मुद्दाए जिंदगी, सीख ले फूलों से गाफिल मुद्दाए जिंदगी, खुद महकना ही नहीं गुलशन को भी महकाना है, खुद महकना ही नहीं गुलशन को भी महकाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। जय हिंद। जय भारत।
बहुत बहुत धन्यवाद हरिश्चंद्र जी का। उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से इसको समझाया है कि स्पिरिचुअल ट्रूथ माना वो नेचुरल होता है, जैसे पेड़ पौधे। उन्होंने बहुत सारे उदाहरण देकर समझाया, उनका नेचर जैसे नेचुरल होता है, वैसे हमारी स्थिति जो नेचुरल स्टेज है, पीस है, उसमें आपस में प्यार है, तो उस वैल्यूज को लेकर चलना ही स्पिरिचुअल ट्रूथ है। अब मैं आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे जी को। पूर्वे जी इज अ डॉक्टरेट डिग्री होल्डर इन साइंस एंड ही इज अ रिटायर्ड प्रिंसिपल इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट बिहार यूनिवर्सिटी। पूर्वे जी इज अ मेंबर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल। फ्रॉम द पास्ट 24 ईयर्स ही हैज बीन द एमएलए और एमएलसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी। He was also the former education and parliamentarian minister of Bihar. Shri Purveji is a state president of RJD and he has been associated with the organization from past 5 years. I invite Purveji to throw some light on this topic.
ओम शांति। परमादरणीय राजयोगी बीके सूरी जी, आदरणीय श्री हरिचंद्र जी, बीके राजयोगिनी मेघा जी, बीके शिल्पा जी एवं इस सभागार में बैठे सभी प्रतिभागी सुधीजनों, बहनों एवं भाइयों, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज पुनः हमें अपने परिवार के साथ परमपिता परमात्मा शिव बाबा कि आध्यात्मिकता से सराबोर परिपूर्ण एवं परिपुष्ट प्रजापिता वर्मा बाबा की इस धरती पर आने का मौका मिला। मैं परमपिता परमात्मा शिव बाबा एवं वर्मा बाबा की चरण वंदना करते हुए इस पावन धरती का नमन करता हूं और आप सभी प्रतिभागी भाइयों का, मंच पर बैठे हुए जो महानुभाव हैं उनका मैं प्रणाम करता हूं। मेरा इस माउंट आबू प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से पुराना संबंध रहा है और हम ऐसा महसूस करते हैं, याद करते हैं तो शायद 6 बार बाबा ने यहां पर हमको बुलाया है और बाबा के आमंत्रण पर हम यहां पर आए हैं। इसके लिए हम अपने पटना के साथी भाई प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार जी को और प्रोफेसर शंकर जी को भी विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। इस बार मुझे आने की इच्छा नहीं हुई, इच्छा नहीं थी इसलिए कि कई बार शिक्षा संभाग का भी कॉन्फ्रेंस हुआ था, विषय था कि मूल्य एवं मोरालिटी के द्वारा जीवन का सशक्तिकरण। करीब पूरे हिंदुस्तान से करीब 5500 शिक्षक यूनिवर्सिटी से लेकर प्राइमरी एजुकेशन तक वहां पर आए थे और हमको कहा गया था चूंकि आप शिक्षा मंत्री रहे हैं तो हाउ टू इम्पार्ट मोरल एजुकेशन इन स्कूल, इसी पर हमने अपना उद्गार व्यक्त किया था। चूंकि मैं राजनीति में हूं इसलिए 2 बार राजनेता की भूमिका स्वर्णिम भारत के निर्माण में, इस पर जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें भी मुझे आने का मौका मिला। इधर स्पार्क के स्पार्क हम सुनते रहे, लेकिन स्पार्क की गहराई के विषय में हमको जानकारी नहीं थी। तो शंकर भाई जो प्रोफेसर है उन्होंने कहा, हमने कहा कि भाई हम शिक्षक रहे हैं पॉलिटिशियन हैं, अभी स्पार्क में हम क्या जाकर के बोलेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, आपका तो आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर आपका रिसर्च है, और आइंस्टीन का जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, क्योंकि आइंस्टीन फिलोसफर थे और उन्होंने विभिन्न धर्मों का रिलेटिव स्टडी और साथ ही साथ विज्ञान और अध्यात्म के संबंध में भी उनका गहरा झुकाव था, इसलिए आपको जाना चाहिए। और उस समय का जो विषय था, रोल ऑफ रिसर्चर्स इन शेपिंग द सोसाइटी, दूसरा जो विषय था, पावर ऑफ द पास्ट एंड फोर्स ऑफ द फ्यूचर। आदरणीय सूर्य भाई जी, अब इस विषय के विषय में हमको बुझावे नहीं कर रहा था कि यह क्या है। पटना यूनिवर्सिटी के बहुत सारे विद्वानों से भी मैंने पूछा कि साहब यह क्या है विषय, पावर ऑफ द पास्ट एंड फोर्स ऑफ द फ्यूचर। तो अंत में हमारे पिताजी जो स्वर्गीय हो गए हैं, रामगढ़ अधिवेशन में गए थे, महात्मा गांधी के विषय में बराबर वो चर्चा करते थे, लोकमान्य तिलक के विषय में और स्वामी विवेकानंद के विषय में, कि महात्मा गांधी ने जो हमारी संस्कृति और परंपरा में और हिंदुस्तान में जो कल्चरल हीरो हुए हैं, आध्यात्मिक पुरुष हुए हैं, उनकी जो समझ सोच और अनुसंधान से, जिसको हम कहते हैं पावर ऑफ द पास्ट, उससे जो शक्ति प्राप्त की है उसी शक्ति का इस्तेमाल उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में किया और देश आजाद हुआ। खैर उसी बैकग्राउंड में हमको यहां पर आने का मौका मिला। भाई आदरणीय सूर्य जी भी थे, और इस बार का जो विषय है, हम धन्यवाद देना चाहते हैं सार्क परिवार को कि आप बड़ा गहन विषय का चुनाव करते हैं। यह टेक्निकल ही नहीं है, टेक्निकल भी है, गहन भी है। और यह विषय जो है, कभी कभी हम टीचर थे तो कहा करते थे टीचिंग जो है सो ईयर प्लीजिंग हो और हार्ट पेनिट्रेटिंग भी हो। अगर ईयर प्लीजिंग नहीं होगा तो लड़का शांत भाव से लेक्चर सुनेगा ही नहीं, और सब शांत भाव से लेक्चर सुनेगा, आनंदित होगा, लेकिन अगर हार्ट पेनिट्रेटिंग नहीं हो तो उस लेक्चर का दूरगामी प्रभाव विद्यार्थियों पर नहीं पड़ेगा। तो जो विषय आज का जो मुख्य तौर पर जो कॉन्फ्रेंस आयोजित है, को क्रिएटिंग हार्मोनी थ्रू रिसर्च एंड एसोसिएशन, हमारे भाई साहब हरिचंद्र जी ने एक साहित्यिक ढंग से जो होता है, कवि का जो मिजाज होता है, साहित्यकार का जो मिजाज होता है, उस मिजाज से इन्होंने चीजों को चित्रित करने का काम किया। और ठीक ही आपने बतलाया कि कण कण में भगवान है। हमारे यहां भी गीता में कहा गया है, गीता में नहीं अध्यात्म में कहा गया है कि जो भगवान ऑलमाइटी गॉड है, उसका जो सूक्ष्म स्वरूप और स्थूल शरीर स्वरूप, सूक्ष्म स्वरूप को प्राप्त करना बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन जो पेड़ है, पौधा है, नदी है, पहाड़ है, आप ऐसे लोग हैं, ये भगवान का गिफ्ट है, भगवान का क्रिएशन है। और भगवान के इस क्रिएशन में हम भगवान के रूप को, अस्थूल रूप को देखने का अगर अभ्यास करते हैं, और हम यह मानते हैं कि सभी ईश्वरीय आत्मा है, सभी में भगवान है, तो कहीं न कहीं भगवान की प्राप्ति नहीं हो सके, लेकिन भगवान प्राप्त करने का जो मार्ग है उस मार्ग पर चलना हम लोगों के लिए संभव हो सकेगा। ठीक आपने बतलाया कि हम इन चीजों से सबक नहीं लेते हैं, ये हवा है, सूर्य है, नदी है, पहाड़ है, पेड़ है, पौधा है, कांटा है, फूल है, बहुत सुंदर ढंग से आपने इसको विश्लेषित ही नहीं किया बल्कि हम लोगों को संबोध कराने का काम किया इनके जो है, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज का जो विषय मेन विषय तो कॉन्फ्रेंस है को क्रिएटिव हार्मोनी थ्रू रिसर्च एंड एस्टिलिटी, लेकिन इसका जो सब सब्जेक्ट है वह सब सब्जेक्ट जो है वह सब सब्जेक्ट है एलिंगनिंग माई लाइफ विथ माई स्पिरिचुअल ट्रूथ। जो आपका आपके दिमाग में जो बात आई थी मेरे भी दिमाग में आया कि विषय होना चाहिए था एलिंगनिंग लाइफ विथ स्पिरिचुअल ट्रूथ, लेकिन बहन बीके शिल्पा जी मिली थी तो उन्होंने कहा कि आपका जो अनुभव है उसी अनुभव को बतलाइए, आपने क्या एक्सपीरियंस किया। जैसे इसका बड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, हिंदी में इसका अर्थ है कि मेरे जीवन का आध्यात्मिक सत्य के साथ संरेखन, संरेखन यानी जो आध्यात्मिक सत्य है उसके साथ अपने जीवन को ढालना, उसके साथ अपने जीवन को पंक्तिबद्ध करना, टू फॉल इन स्पिरिचुअल ट्रुथ यानी आध्यात्मिक सत्य जो है। तो अभी यह बड़ा गंभीर विषय है, अब इसमें जो सो एक सत्य, दूसरा है आध्यात्मिक, तीसरा है जीवन, अब इसका कोऑर्डिनेशन कैसे होगा यह एक गहन विषय है। तो अभी जो सवेरे जो विषय पर डिस्कशन हो रहा था बड़ा एग्जॉस्टिव सेशन था को क्रिएटिंग हार्मोनी थ्रू रिसर्च एंड स्पेशलिटी, हम महसूस कर रहे थे कि सबसे पहले हमको अपने दिमाग में जो आइडियाज आ रहे हैं पॉजिटिव निगेटिव बहुत तरह के, चूंकि हम तो संसार से जुड़े हुए हैं तो संसार से जुड़े रहने के कारण हमारे दिमाग में जो हजारों विचार आ रहे हैं और हम नहीं सोच पा रहे हैं कि किस विचार के साथ हम अपने को करें, तो कहीं न कहीं पहला जो द्वंद मेरे विचार में है उसको उसमें हम हार्मोनी कैसे पैदा करें, दूसरा परिवार के साथ, पहले हमारे परिवार में एक ही टेलीविजन था अब तीन टेलीविजन है, एक में हमको डिस्टर्बेंस होता था जब हम न्यूज खोलते थे तो हमारी वाइफ डॉक्टर रंजना पूर्वे जी हैं वो पीस ऑफ माइंड खोल देती थी, हमारा बेटा आता था तो स्पोर्ट्स खोल देता था। तो मैंने एक परिवार के साथ जो द्वंद्व उसको कैसे हम एक है बाल बच्चा है समाज है सारी चीजें हैं। एक चीज जो मैं हार्मोनी शब्द का कभी कभी किसी परिवार में एक परिवार में गए उस परिवार में इंजीनियर था तो एक गिलास पानी लाने के लिए कहा गया तो इंजीनियर बेटा ने कहा कि इट इज नॉट माय ड्यूटी, इट इज नॉट माय ड्यूटी, आई एम नॉट फॉर दैट। हम IIT प्रोडक्ट हैं, आपको यह है कि लैट्रिन साफ कीजिए। मेरे दिमाग में आया कि जब बुनियादी विद्यालय महात्मा गांधी ने खोला चंपारण आंदोलन के क्रम में तो उन्होंने शिक्षा के उद्देश्य पर प्रकाश डाला, तीन एच, एक है हेड हार्ट एंड हैंड, हेड हार्ट एंड हैंड। अब ये जो है हेड जो है बड़ी द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है यानी मस्तिष्क का विकास जितना तेजी से हो रहा है, 5 साल का लड़का 3 साल का लड़का में जो देखते हैं वही मोबाइल हैंडल करता है वही इंटरनेट हैंडल करता है वही सब कुछ करता है। हम लोग को दिक्कत होती है कभी कभी उसको खुशामद करते हैं कि बहुआ आप जाके ही फलाना जगह भाषण कर देता तब मटेरियल तक जुटा दे। तो मस्तिष्क का विकास बड़ा जबरदस्त ढंग से हो रहा है लेकिन कभी कभी हमारे परिवार में लोग कहता है कि स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, कि बेड रिडन हो जाएगा तो वी विल टेक केयर ऑफ यू। जब बिछावन पर पड़ जाइएगा तो बेटा भी आपको नहीं पूछेगा। तो कभी कभी लगता है कि भाई IITian है, फलाना है, चिलाना है, लेकिन सभी मेरे औलाद क्या हृदय सुन हो गए? और अगर मतलब कि मेड सर्वेंट नहीं आई तो बगल के जो होम डिलीवरी आजकल होता है फूड का, वह मंगाना पड़ रहा है, हाथ नहीं काम कर रहा है। तो सबसे पहले का चीज हम यह चाहेंगे कि हेड, हार्ट एंड हैंड में हारमोनी जब होगा तो यह हारमोनी का जो प्रोजेक्शन होगा वह प्रोजेक्शन समाज में हारमोनियस हारमोनी पैदा करेगा, देश में हारमोनी पैदा करेगा, यह मैं कहना चाहता हूं। तीसरी चीज जो मतलब कि आध्यात्मिकता क्या है, हमारे समझ से जो शुद्ध विचार है, मैडम हम कोई ज्यादा ना बढ़ा क्या है, थैंक हम जो आध्यात्मिकता जो है हम सभी लोगों के बीच में है। मैं व्यक्तिगत जब आपके इस संस्था से प्रभावित हुआ तो सोने के समय में बराबर मैं कि मैं दिव्य आत्मा हूं, ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, पवित्र पवित्र ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, पवित्रता मुझ में है, प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, शांति स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप एवं शक्ति स्वरूप। ये मतलब कि आत्मा का गुण है, आत्मा का गुण नहीं बल्कि हर मनुष्य हर इंसान का यह मौलिक गुण है। लेकिन इस मौलिक गुण को अक्षुण रखने के लिए हमें जब भाव शुद्धि की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो इस भौतिक ये जो हमारी आत्मा का गुण कहिए चाहे मनुष्य का जो ओरिजिनल गुण है, उस गुण को अक्षुण रखने के लिए हमको कर्तव्य निष्ठ होना पड़ता है, हमें सत्यनिष्ठ होना पड़ता है, हमें ईमानदार बनना पड़ता है और हमें अलोभ लोभ मुक्त, भय मुक्त और सही सुनाव अनाशक्ति, ये सब जो वर्चुअस जो टूल्स है, इस टूल्स का इस्तेमाल करेंगे तभी दिव्य आत्मा का जो गुण है, मनुष्य का जो गुण है, वह हमारे साथ रह सकेगा। लेकिन एक ड्रैगिंग फोर्स ये जो सोसाइटी का है, जो भौतिकवादी सोसाइटी है, जो उपभोक्तावादी सोसाइटी है, उस सोसाइटी का एक वाइब्रेशन, एक ड्रैगिंग फोर्स बराबर हम पर काम करता है, जो हमें विकार पैदा करता है, वह विकार है लोभ का, काम का, क्रोध का, आसक्ति का, उन्माद का, अहंकार का, ईर्ष्या का, दोषारोपण का, आलस्य का, भय का, घृणा, ये सब जो चारित्रिक दुर्बलता, ये जन्मजात नहीं है लेकिन सोसाइटी का जो स्वरूप है, जो सोसाइटी के जो लोग हैं और खास करके इस भौतिकवाद में जो उपभोक्तावादी संस्कृति, कभी कभी हमसे भी पूछता है लोग, अब 24 साल मेरा 25वां साल है MLA और हमने अपने जब हमने महसूस किया कि सबसे पहले हम अपने में आध्यात्मिकता पैदा करें। जब मैं राजनीति में शिक्षक था और शिक्षक के बाद राजनीति में आया तो दो प्रिंसिपल मेरे दिमाग में आया, एक था कि स्पिरिचुअल कन्वर्जेंस ऑफ माय लाइफ एंड कैरियर, मेरे जीवन और मेरे कैरियर का आध्यात्मिक महासमापन, और दूसरा राजनीति में आया स्पिरिचुअल एप्लीकेशन ऑफ पॉलिटिक्स। हम सिर्फ वोट लेने के लिए नहीं है, दुनिया में दो ही ताकत है, एक है राजनीतिक ताकत और दूसरा है आध्यात्मिक ताकत या धार्मिक ताकत। यानी हम बराबर कहते थे कि मैं जब क्षेत्र में जाता था और मैं भाषण करता था तो मैं कहता था कि मेरे भीतर जो शिक्षक नाम का प्राणी है वह सूखने नहीं पावे, मैं डॉक्टर इंजीनियर आदमी बनाने के लिए शिक्षक बना हूं, मैं जुगेरी शराबी बनाने के लिए मैं राजनीति में नहीं आया हूं। तो सबसे पहले मेरा मन से आग्रह होगा कि जो हम यहां पर आते हैं तो अपना जो हमारा जो थॉट क्या है हम अपने को फिक्स करें और उस फिक्स के तहत समाज को हम आंदोलित करें। ठीक हमारे कहा गया है टीचिंग हमारा है टीचिंग रिसर्च एंड एक्सटेंशन, यानी हमें जो चेतना आई है उस चेतना का प्रभाव, स्वामी विवेकानंद जब साधक साधना को पूरा कर करके रामकृष्ण परमहंस के पास गए तो रामकृष्ण परमहंस को कहा कि गुरुदेव हमने साधना प्राप्त कर लिया है। तो रामकृष्ण परमहंस ने डांटा कि सेल्फ साल्वेशन इज नो साल्वेशन, हम यहां पर आए हैं, यहां के जो बहन हैं भाई हैं, हमको सत्य का साकार स्वरूप का दर्शन इस प्रांगण में, इस मधुबन में, इस ज्ञान सरोवर में हुआ है। हंसता हुआ चेहरा सभी भाई बहन का, सेवा करने का भाव, कहीं कोई परेशानी नहीं। अब इसी सत्य को अंगीकार आत्मसात कर करके न सिर्फ अपने में सृजित करें, अपने में इसको ठोस रूप दें, बल्कि इस सत्य का वाइब्रेशन हमारे अगल बगल में हो, तो हम समझते हैं कि यहां आना मेरा सार्थक होगा। मेरा यही कहना है कि जो वर्चुअस प्वाइंट हम में है, जो जन्मजात हैं, दिव्य आत्मा जो हम में है, उस दिव्य आत्मा और यहां आने के बाद जो हमारे भीतर वाइब्रेशन पैदा होता है, उस वाइब्रेशन के साथ अपने जीवन को ढालने का हम प्रयास करें। और जीवन को ढालने का पेट परोस प्रकृति और परमात्मा, मतलब कि जीवन को ढालने में कहीं भी हम समझौता उन चीजों से नहीं करें जो हमारे चरित्र की दुर्बलता को प्रलक्षित कर दे और हमको कहीं न कहीं असत्य के रास्ता पर ले जाए। इसी विश्वास के साथ हम आप तमाम लोगों को, चूंकि मैं राजनीति में रहा हूं और साहित्य का विद्यार्थी नहीं रहा हूं, लेकिन उस कहानी उस ढंग से अपनी बातों को आपके साथ नहीं रख सकता हूं जो आपको बहुत अधिक क्या कहते हैं हार्ट क्या कहते हैं हेयर प्लीजिंग हो, लेकिन हमारा यह मानना है कि हमने इसको प्रयोग किया है अपने जीवन में। और हम अपनी पत्नी को भी धन्यवाद देते हैं, कभी कभी किसी फंक्शन में जाते हैं, रविवार है, भोजन का बढ़िया इंतजाम है, इच्छा होती है, लेकिन रविवार है, संडे नमक नहीं खाते हैं, तो वहां पर सिर्फ जलेबी खा करके रह जाते हैं। कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि आप कैसे सर्वाइव कीजिएगा इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में। इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स बड़ा जबरदस्त, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में जहां विभिन्न तरह के लोगों के साथ अपने को एडजस्ट करना है, वहीं विभिन्न तरह की इच्छा और अनिच्छा के बीच आप सत्य के रास्ते पर अपने को कैसे एकनिष्ठ रखेंगे, यह भी एक परीक्षण होता है। इसी विश्वास के साथ हम यहां पर आए हैं, यहां का जो आध्यात्मिक वातावरण है, परमपिता परमात्मा शिव बाबा की जो आध्यात्मिकता है, उनकी कृपा है जो हमको यहां बराबर लाया जाता है, लाते हैं, तो हम सभी पहुंच कर करके न अपने आत्मा को अपने को शुद्ध करें, बल्कि आसपास के लोगों में भी वाइब्रेशन देने का काम करें, ताकि हमारे जीवन की सार्थकता परिलक्षित हो सके, हम यथार्थता साबित कर सकें। इसी विश्वास के साथ आप तमाम लोगों का प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, इस धरती को पुनः नमन करते हुए हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। ओम शांति।
पूर्वे जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निमंत्रण करना चाहती हूं हमारी बहुत वरिष्ठ राजयोगम शिक्षक बीके सूरज भाई जी को। सूरज भाई जी साइंस ग्रेजुएट हैं एंड इस संस्था से 1964 से जुड़े हैं एंड इज डेडिकेटेड हिज लाइफ इन द गॉडली सर्विस फॉर मोर देन 50 इयर्स। प्रेजेंटली ही इज प्रोवाइडिंग हिज सर्विस एज अ सीनियर राजयोगा टीचर इन दिस कैंपस, जिस कैंपस में आप हैं वहीं पे। सो हिज कॉन्ट्रीब्यूशन हैज बीन इनवेरिएबल फॉर स्पार्क एंड इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द किचन डिपार्टमेंट। पूरे जो तीन कॉम्प्लेक्स हैं उसके किचन पूरा भाई साहब संभालते हैं और वो बहुत अच्छे वक्ता भी है और बहुत सारे टॉक्स भी दिए हैं और टीवी में जो समाधान प्रोग्राम है उसमें बहुत सारे व्यूअर्स को अपनी प्रॉब्लम्स की समाधान भी देते हैं। उनके बहुत सारे किताब भी छपे हुए हैं, वो दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज में ट्रैवल करके अपनी आध्यात्मिक ज्ञान से बहुत सारे लोगों के मार्गदर्शन देते हैं। अब मैं निमंत्रण करती हूँ भाई साहब को इस टॉपिक के ऊपर अपना प्रकाश।
ओम शांति। सम्माननीय मंच, बुद्धिमान भाइयों और बहनों, टॉपिक तो बहुत ही सुंदर और हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। हमें अलाइन करना है अपनी लाइफ को स्पिरिचुअलिटी से। सीधी भाषा में अपने जीवन में स्पिरिचुअलिटी भरनी है। क्या है ये स्पिरिचुअलिटी? हरिश्चंद्र जी ने तो कई बातें कह दी, मुझे लग रहा था आप शायद वही हरिश्चंद्र तो नहीं है कहीं, वही तो बहुत अच्छा। मुझे तो कुछ सोचना ही नहीं पड़ा कि क्या बोलना है, उन्होंने सब खोल दिया मेरे लिए। स्पिरिचुअलिटी है क्या? भिन्न भिन्न तरह से इसको डिफाइन किया जा सकता है। मंदिरों में चले जाना, पूजा पाठ मंत्र जाप कर लेना, यज्ञ हवन कर लेना, ये हमारे धार्मिक अनुष्ठान हैं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी इन सब से हटकर है। मैं इसको थोड़े में एक्सप्लेन कर दूं। ये सब स्पिरिट से बना है, आत्मा। स्पिरिट माना आत्मा। आत्मा के जिन गुणों की चर्चा डॉक्टर साहब कर रहे थे, मैं उन्हें रिपीट नहीं करूंगा। सुख शांति प्रेम आनंद जो भी गुण हैं, उनको जीवन में भरना स्पिरिचुअलिटी है। सीधी सी बात, यानी स्पिरिट अपने मूल स्वरूप में आ जाए। दूसरी बात, हरिश्चंद्र जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, हम सभी के अंदर परमात्म प्रकाश है। मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा। वो प्रकाश डिम हो गया है आजकल, इसलिए चेहरों पर वो नूर दिखाई नहीं देता। परमात्मा से कनेक्ट होना, उससे बुद्धि योग लगाना, जिसको यहां हम राजयोग कह रहे हैं, तो उसकी लाइट हम में आ जाए और हमारी लाइट बढ़ती जाए, ये स्पिरिचुअलिटी है। हमारी लाइट इतनी बढ़ जाए कि उसके प्रकाश से जग का अंधकार विलीन होने लगे, ये स्पिरिचुअलिटी है। तो हमें अपने जीवन में इन चीजों को भरना है। हम लोग जो यहां प्रैक्टिस करते हैं, भाई साहब कह रहे थे सबके चेहरों पर मुस्कुराहट, सेवा भाव, और भी बहुत कुछ है। यहां कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको बाह्य रूप से दिखाई नहीं देंगी, बहुत बड़ा डेडिकेशन, परमात्मा के प्रति अपने को अर्पित कर देना, अपना कुछ नहीं, सब कुछ उसके लिए, जीवन को संपूर्ण प्योर बना लेना, इस लक्ष्य को लेकर हम लोग चल रहे हैं। हमारे यहां जब ये ज्ञान सरोवर बना, मैं ज्ञान सरोवर की बात कहूं, मैं ही था यहां, 400 युवक आए अपने लाइफ को डेडिकेट करने के लिए। उनमें से 125 को चुना गया, मैंने 100 को चुना, बाकी अलग अलग डिपार्टमेंट्स वालों ने अपने अपने लोग चुने। सब युवक थे, कोई बीएससी करके आया, कोई बीटेक करके आया, कोई एमकॉम करके आया, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे। सबने अपने लाइफ को डेडिकेट किया और एक प्योर लाइफ जीने की प्रतिज्ञा कर ली। देखिए, यह है स्पिरिचुअलिटी। दूसरा, एक तीसरी डेफिनेशन जिससे आप बहुत अच्छी तरह इसको समझ पाएंगे। भौतिकता का प्रचार प्रसार बहुत हुआ। भाई साहब ने कहा कि विज्ञान ने हमें बहुत कुछ दिया, हम उसे कैसे यूज करते हैं ये हमारे ऊपर है। नो डाउट, विज्ञान की हर चीज हमारे लिए वरदान है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स आया, जो नेट, मोबाइल और उस पर व्हाट्सएप, ये सब हमारे लिए वरदान है। परंतु अगर हम इसको अपने लिए अभिशाप बना लें तो ये हमारी अपनी कमजोरी है। तो हम इस बात का बहुत ध्यान दें कि भौतिकता की ओर जो सब बढ़ रहे हैं, उसके साथ ये स्पिरिचुअलिटी जोड़ना परम आवश्यक है। मैं पहला उदाहरण दूंगा, आप कैसे जोड़ेंगे। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करूंगा। आजकल क्या हो गया है समाज में कि व्हाट्सएप का या फेसबुक का इतना क्रेज है कि सवेरे उठते ही पहला ध्यान कहां जाता है, क्या क्या माल आया है रात को, और रात को सोने से पहले जो सारे दिन का माल है उसको जरा कलेक्ट कर लें, स्टोर करके अपने भंडार भर लें। ये थोड़ी गड़बड़ हो रही है। और मैं आपको सच बता दूं, मैं डॉक्टर तो नहीं हूं, पर अनेक केस डिप्रेशन के मेरे पास आते हैं, ठीक करो हमें, और उसका मुझे एक ही कारण दिखाई देता है, नेट, मोबाइल, फेसबुक, ये व्हाट्सएप, और इसका अत्यधिक यूज, हम भी यूज करते हैं, बहुत सुंदर उपयोग, बहुत पॉजिटिव उपयोग। तो हम ये सीख लें कि किसी भी चीज का सदुपयोग करना स्पिरिचुअलिटी है, दुरुपयोग करना उसके अपोजिट चीज हो गई। तो क्या हो रहा है अब, हम कैसे करेंगे? सवेरे हम उठते हैं, मैं आपको एक सुंदर छोटी सी बात कह देता हूं। अगर आप सवेरे उठते अखबार पढ़ा, टीवी देखी, या ये व्हाट्सएप की बहुत सारी चीजें देखी, सवेरे आंख खुलने पर पहले 10 मिनट हमारा सबकॉन्शियस माइंड फुल्ली एक्टिव होता है, जगा होता है। उसमें जो कुछ हम डाल रहे हैं वो हमारा जीवन बन रहा है, उससे हमारी लाइफ परफेक्टली अफेक्टेड हो रही है। इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को यह है स्पिरिचुअलिटी को जीवन से जोड़ना, एक बुद्धिमान व्यक्ति को सवेरे उठकर पहले 10 मिनट सुंदर चिंतन में व्यतीत करने चाहिए। आपका लाइफ कमल फूल की तरह खिलने लगेगा, सुगंध आपकी चारों ओर फैलेगी, क्योंकि ब्रेन उसको एक्सेप्ट करेगा, ब्रेन एनर्जेटिक हो गया, बुद्धिमान हो गए हैं लोग बहुत। भाई साहब कह रहे थे ना, सुखों में तो कोई भगवान को धन्यवाद या कुछ देता नहीं, जब हाथ टांग टूट जाती है तभी देता है ना, उसे याद करता है। तो हम सवेरे उठकर अपने परमपिता को उन अचीवमेंट्स के लिए धन्यवाद दें जो उसने हमें कराई हैं, वो सब बढ़ती जाएगी। तो मैं आपको एक बात कह रहा था, जब भाई साहब बोल रहे मुझे याद आ रहा था कि आम व्यक्ति तो बहुत सुखी हैं संसार में, लेकिन अधिकतर दुखी लोग वो हैं जो बहुत बुद्धिमान हैं। आर यू एग्री टू मी? सोच लेना, ज्यादा सोच रहे हैं, ज्यादा एनालिसिस कर रहे हैं, मन की स्पीड को बहुत फास्ट कर दिया है, हर चीज पे गहरा चिंतन हो रहा है, इससे ब्रेन की एनर्जी नष्ट हो रही है। हमें विचार करना है, सभी आप बुद्धिमान लोग बैठे हैं, इस पार्क में आए हैं, ये हमारे यहाँ का एक रिसर्च डिपार्टमेंट है, बहुत सुंदर। आप चिंतन करें आज, अगर हम सही रास्तों पर होते तो संसार में रोग क्यों बढ़ते? सोचो, अगर डॉक्टर्स, अगर मेडिकल साइंस परफेक्ट होती तो रोग कम होते जाते। हमारे यहाँ डॉक्टर होके गए हैं, पीछे बहुत बड़ी सभा थी सुंदर, 800 लोगों की, सीनियर मोस्ट डॉक्टर, मैंने उनके सामने भी ये बात रखी। आप मेडिकल साइंटिस्ट को सोचना चाहिए कि अगर हमारा मार्ग सही है, अगर हमारी रिसर्च सही है, तो बीमारियों पर कंट्रोल होना चाहिए। आज ऐसी अनेक बीमारियां आ रही हैं कि डॉक्टर्स हाथ उठा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरी चीज, अगर हम सही मार्ग पर होते तो संसार में चरित्र बहुत सुंदर होता सबका, घर घर में प्रेम की गंगा बहती, निस्वार्थ भावनाएं होती, सब एक दूसरे को अपनापन देते, आज हमारे परिवार कहाँ पहुंच गए हैं? मैं कई बार सुना चुका हूं, हमारे पास पीछे एक सुप्रीम कोर्ट के वकील आए, मैंने उनसे पूछा आजकल कौन से केसेस ज्यादा आ रहे हैं, कहा डिवोर्स के। मैंने पूछा अंदाज है कितने होंगे, आजकल तो कंप्यूटराइज्ड है सब कुछ, पता चल सकता है, कहा 60 लाख। 60 लाख केस भारत के कोर्ट्स में डिवोर्स के आ गए हैं, कब उनका निर्णय होगा, कितने परिवारों में अशांति हो रही होगी, कितने युवक डिप्रेशन में जा रहे हैं। हमारा मार्ग अगर सत्य होता तो इस बुरी स्थिति पर हम क्यों पहुंचते? हम भारतवासी, मैं भारतवासियों की बात करता हूं, जो एक महान देश है, जहां महान विभूतियों ने जन्म लिया, जहां की धरा देवताओं के कदमों से आलोकित हुई, उस धरा पर वेस्टर्न कल्चर का आकर्षण क्यों होता? मैं विदेश गया था सबसे पहले 92 में, हर व्यक्ति डिवोर्स्ड, मैं पूछता था हंसी की बात, कहा हम लोग के यहाँ तो कॉमन मान्यता है हर एक को तीन तीन बार शादी करनी है, हमारे अकाउंट अलग रहते हैं, कार अलग रहती है, मकान अलग रहता है, जब मर्जी आए छोड़ के चल दो, आदत पड़ी हुई है। पर इंडियन कल्चर इसको स्वीकार नहीं करती, एक बार तलाक होना माना दो के नहीं 10 के ब्रेन पर बुरा इफेक्ट आता है, मानसिक रोग बढ़ते हैं, हमें सोचना है, अपने समाज से हमें अध्यात्म को जोड़ना है। सच्चा प्रेम, सच्ची शांति, सच्चा अपनापन, झुककर चलने की आदत। भाई साहब कह रहे थे ना, तूफान आते हैं, दीवारें गिर जाती हैं, पर जो लचीले वृक्ष हैं वो नहीं गिरते, वो झूलते हैं। परमात्मा की रचना, मनुष्य भी जो फ्लेक्सिबल हो जाएगा, जो झुकना सीख लेगा, वो टूटेगा नहीं, वो गिरेगा नहीं। और जिन मनुष्यों ने अपने जीवन में झुकना सीख लिया हो, ईगोलेसनेस सीख ली हो, जो ईगोलेस है वही झुकेगा, वहां डिवोर्स कभी होता नहीं, बहुत सारे परिवार सुखी हैं, आनंद बना रहे हैं। तो अध्यात्म हमें ये सिखाता है, जितने तुम बड़े बनो उतने ही पोलाइट बनो, जितने तुम्हें मान सम्मान ज्यादा मिले समाज में उतने ही झुक कर चलना सीखो, तुम्हारे अंदर मानताएं आनी चाहिए। क्रोध की अग्नि ने अनेक घरों को जलाकर खत्म किया हुआ है। मैं देखता हूं बाप और बच्चे के झगड़े, पति और पत्नी के झगड़े, डिवोर्स नहीं होते लेकिन अशांति की अग्नि में जलते रहते हैं सभी। अध्यात्म हमें पीसफुल होना सिखाता है, हमें एक दूसरे को सम्मान देना सिखाता है, एक दूसरे के टैलेंट्स को मान्य करना सिखाता है, एक दूसरे को आगे बढ़ना सिखाता है। भाई साहब कह रहे थे ना, दीवारें तो टूटेंगी, लेकिन अध्यात्म हमें ये भी सिखाता है, किसी ने तुम्हारे आगे दीवार खड़ी कर दी हो, रास्ता बदल लो, अनेक द्वार हैं। दीवार है लेकिन द्वार भी बहुत हैं। अध्यात्म हमें सिखाता है कि तुम ऑलमाइटी की संतान हो, देयरफॉर यू आर मोस्ट पावरफुल। घबराओ नहीं, डरो नहीं, परिस्थिति आएंगी, लोग तुम्हारा मार्ग भी रोकेंगे, द्वार बंद करेंगे, दीवारें भी खड़ी करेंगे, तुम आगे बढ़ोगे तुम्हारी टांगे भी पीछे खींचेंगे, परंतु तुम्हें आगे बढ़ते जाना है। ये हमें अध्यात्म सिखाता है। तो अध्यात्म से हम अपने जीवन को भरपूर करें। सवेरे उठते ही सुंदर विचार किया करें, सोने से पहले। भाई साहब कह रहे थे, प्रोफेसर साहब मैं रात को याद कर लेता हूं ये सब चीजें। हम लोग और कुछ भी कर लेते हैं, मेडिटेशन चलता है आधा घंटा, लोग मेडिटेशन करके सोते हैं। परमात्मा से जुड़कर, परमात्मा से केवल प्रेयर करके नहीं, हम उसके बच्चे हैं। अध्यात्म हमें ये सिखाता है, भक्ति ने सिखाया, भगवान में श्रद्धा रखो, उनसे मांग लो कुछ, प्रेयर करो। और अध्यात्म सिखाता है तुम उसकी संतान हो, जुड़ जाओ उससे, जो कुछ उसका है वो सब तुम्हारा है, अधिकार से उसे अचीव करो। तो हमें अध्यात्म को जोड़ना है अपने कर्मों से। देखिए हम लोगों ने कैसे जोड़ा है। सवेरे बहुत अच्छा मेडिटेशन यहाँ चलता है, आज चला सवेरे, आप लोग भी कई आए होंगे, कल अवश्य आना, मैं आपको गाइडेड मेडिटेशन कराऊंगा, बहुत सुंदर अनुभव होंगे। एक घंटा हम अपने को स्पिरिचुअल पावर से भर लेते हैं, जो मैंने कहा प्रकाश धीम हो गया है वो बढ़ने लगता है ना, उसकी लो बढ़ने लगती है, तो और चीज हमें प्राप्त होती है। और जब हम प्रकाशित हो जाते हैं तो हमें सब कुछ दिखेगा ना, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, ये रास्ता ठीक है, ये गलत है, हमें दिखाई देगा। हमारे प्रकाश धीम हो गया है तो मनुष्य पाप कर रहा है और उसे पता नहीं वो पाप कर रहा है, वो गलत मार्ग पर जा रहा है और उसे पता नहीं कि वो भी कुछ गलती कर रहा है, वो उंगली दूसरों की ओर कर रहा है। उसके बाद हम लोग सवेरे, आप भी कर रहे हैं, 7:45 से सभी क्लास में पहुंच जाते हैं, 8 बजे तक सुंदर ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं, उससे हमारे रोज विचार बदलते हैं, रोज विचारों का प्योरिफिकेशन होता है, रोज निगेटिविटी पॉजिटिविटी में बदलती है। तो एक बहुत अच्छी शुरुआत हम 8 बजे तक कर लेते हैं, जब संसार के बहुत लोग सोकर उठते हैं तब तक हम अपने को पूरी तरह जगा चुके होते हैं, कितना अच्छा होता है। फिर जब कर्म क्षेत्र पर आते हैं तो जो हमने सवेरे किया है उसका इफेक्ट कर्मों में दिखाई देता है। हमारे यहाँ सभी लोग आपस में मिलजुल के काम कर रहे हैं, लड़ाई नहीं, लगभग नहीं, साल में कभी कोई एक छोटा मोटा केस होता है, किसी की कहा सुनी हो गई और थोड़ी सी। देख लो यहाँ पर 300 लोग रहते हैं, 200 डेडिकेटेड हैं, बाकी सेवा में आते हैं। एक एक कमरे में माताएं भी 5, 7, 8 सोती हैं, एक एक कमरे में भाई भी कई कई सोते हैं, झगड़े नहीं, प्यार से रहते हैं, ये स्पिरिचुअलिटी है। जब कर्म में हम रहते हैं तो सबका लक्ष्य रहता है कि कर्म को फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पूर्ण किया जाए। घड़ी नहीं देखते कि टाइम हो गया मेरा, तो हमारा कर्तव्य है कार्यों को पूर्ण करना। तो जिम्मेदारी का भाव नेचुरल रूप से, प्रबल रूप से सबके अंदर रहता है। जब हम कर्म क्षेत्र में रहते हैं तो कर्म योग का अभ्यास करते हैं, परमात्मा से नाता जोड़ कर रखते हैं, उसकी शक्तियों को रिसीव करते रहते हैं, उसे बातें करते रहते हैं। राजयोग में ये सिखाया जाता है हम उससे निरंतर जुड़े कैसे रहें, उसे बातें कैसे करते रहें। तो इस तरह सारा दिन, फिर रात को शाम को योग होता है 6:30 से 7:30, फिर नाइट योग होता है, क्लासेज होती हैं, तो सारा दिन स्पिरिचुअलिटी से हम जैसे स्नान करते रहते हैं, उसे ओतप्रोत होते रहते हैं, तो हमारा जीवन सुधरता जाता है, विचार बदलते जाते हैं। ये एक सुंदर तरीका है, टॉपिक बहुत बड़ा है, बहुत कुछ इस पे कहा जा सकता है, हम अपने अनुभवों से ही कह सकते हैं, पर सार, जीवन को सद्गुणों से भरना, जीवन को काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से मुक्त करना, अपने को अपने परम पिता से जोड़ना, सभी के लिए सद्भावनाएं पैदा करना, ये स्पिरिचुअलिटी है, इसको हम सब अपने से जोड़ दें। लास्ट बात, हरिश्चंद्र जी ने कहा था, वो पंडित की कहानी सुनाई पुजारी की, भाई जो अच्छे ईमानदार हैं और जो भगवान में भावना रखते हैं, भगवान में भावना तो आजकल पापी लोग भी रखते हैं, मैं थोड़ा खराब बोल रहा हूं, पाप करके चोर भी मंदिर में पहुंच जाते हैं महाकाली जी के, बहुत माल लाए हैं थोड़ा सा आपको अर्पित, वो भी करते हैं, लेकिन ईमानदारी, उसके साथ सत्यता, सब आत्माओं के लिए प्रेम, प्योरिटी, निष्काम सेवा भाव जिस मनुष्य के अंदर होती है वही स्वर्ग का अधिकारी है। तो आप सभी स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ से जोड़ देंगे। बहुत अच्छा लगा आप सभी को देखकर, सभी बुद्धिमान भाई बहने आए हैं और निश्चित रूप से स्पिरिचुअल होकर ही जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।
भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक एसेंस में, भाई साहब ने ये कहा कि स्पिरिचुअल ट्रूथ के बारे में हरिश्चंद्र भाई साहब ने कहा और प्रोफेसर साहब ने कहा कि कैसे ये 5 विकार हमें स्पिरिचुअलिटी से बहुत दूर ले जाता है, और सूरज भाई जी ने बहुत सुंदर तरीके से उसको कैसे अलाइन किया जाए, पूरा दिनचर्या उस पर डिपेंड होती है, रात की सोने का टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे बहुत सारे साइकेट्रिस्ट होंगे तो जानते हैं वो पूरा रात में हमें याद रहे या न रहे वही विचार चलता रहता है, तो सोने से पहले और सुबह उठते ही किस तरह का थॉट्स और कर्म क्षेत्र में कैसे हमें रहना है बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने हमें समझाया है। अब मैं निमंत्रण करती हूँ मेघा बहन को, वो हमें परमात्मा, जैसे भाई जी ने कहा कि परमात्मा याद से हमारे अंदर वो आध्यात्मिक ताकत या ऊर्जा ला सकते हैं, तो वो हमें गाइड करेंगे, तो हम 5 मिनट उनकी याद में बैठेंगे।
ओम शांति। आज सुबह ही हमने अपने सत्य स्वरूप के बारे में जाना कि हम सभी कौन हैं, तो आइए अभी हम अपने दिव्य बुद्धि द्वारा उस स्वरूप को देखते हैं, तो आप सभी से अनुरोध है कि थोड़ा सीधा होकर बैठेंगे और थोड़ा समय के लिए हम अपने विचारों को साथ साथ लेते हुए चलते हैं। अगर आपने कुछ हाथ में पकड़ा हुआ है तो आपसे अनुरोध है कि उसको साइड में रख देंगे, और मन में भी अगर किसी बात को पकड़ा है तो उसे भी छोड़ दीजिए। तो चलिए, जैसे ये बाह्य जगत विशाल है, ऐसे ही मेरा आंतरिक जगत भी विशाल है। आज मैं अपने आध्यात्मिक सत्य को अनुभव करती हूं, अपना ध्यान अपनी भ्रुकुटी के मध्य में एकाग्र कीजिए। मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। मैं आत्मा बिंदु रूप हूं, ज्योति स्वरूप हूं, पॉइंट ऑफ लाइट जो भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूं। मैं अपने आप में शुद्ध हूं, पवित्र हूं, शांत स्वरूप हूं। ये मेरी वास्तविकता मुझे अपने जीवन की ऊंचाई पर ले जाएगी। यही वो स्थिति है जिसमें स्थित होकर आत्मा संपूर्णता को पाती है। मैं आत्मा उस परम शक्ति परमात्मा की अति प्रिय संतान हूं। परमात्मा अपनी समस्त शक्तियां मुझे अधिकार के रूप में प्रदान कर रहे हैं। आइए अब हम एक श्रेष्ठ संकल्प लेते हैं। हम इन शक्तियों को अपने जीवन में धारण करते हैं। मेरा जीवन ईश्वर ने दिया हुआ सुंदर उपहार है, अमूल्य देन है जो स्वयं ईश्वर ने मुझे प्रदान किया है। इस सृष्टि नाटक में मुझ आत्मा का विशेष पार्ट है। और सभी आत्माएं भी विशेष पार्टधारी है, क्योंकि वह भी परमात्मा की प्रिय संतान है। आज हम अपने विशेष शांति की शक्ति का अनुभव करते हैं। शांति मुझ आत्मा का श्रृंगार है। यह मेरी अपनी नेचर है। मैं शांत हूं। शांति स्वधर्म में स्थित मुझ आत्मा की दृष्टि सभी के प्रति मंगलमयी है, कल्याणकारी है, स्नेह भरी है। शांति प्रिय मुझ आत्मा के बोल सबके प्रति प्रेरणादायी है, दिल को छूने वाले सत्य बोल हैं, मधुर बोल है। अब मेरा व्यवहार सर्व के प्रति सहज और सरल बन गया है। मेरा संसार ही विशाल हो गया है। मैं आत्मा अपने आप को बंधन मुक्त और सुरक्षित अनुभव कर रही हूं। आध्यात्मिक राह की पथिक मैं शांत प्रिय आत्मा। अब अपने जीवन को खुशहाल अनुभव कर रही हूं। मैं धन्य हो गई हूं। मेरा जीवन सफल हो गया है। ओम शांति शांति।
मीका बहन का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निमंत्रण करती हूँ अपनी बहनों को कि सभी गेस्ट को मोमेंटो प्रेजेंट करें। मैं बहनों को निमंत्रण करती हूँ कि मैं हम तालियों से एटलीस्ट उसका थैंक्स शुक्रिया अदा कर सकते हैं सबके। सभी गेस्ट ने अपने बहुत सुंदर विचारों से हमें मार्गदर्शन दिया, इसलिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब लास्ट जस्ट फ्यू सेकेंड्स के लिए हम प्रभु याद में बैठ के इस सत्र का समाप्त करेंगे।